जय देवला पुस्तक 12वीं लेक्चर नंबर 19। ओम नमः सिद्धेश ओम नमः सिद्धेश ओम नमः सिद्धेश ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वच्छायानं नमो लोए सौवसाम पणमह जिनवरवसहं गणहरवसहं तहेव गुणहरवसहं दुसह परीसह विसहं जैवसहं धम्मसुत्त पाढरवसहं इयपणमिय जिनणाहे गणणाहे तह यचेव मुनिणाहे सम्मत्त शुद्धि हेवं वोच्छं सम्मत्त महियारं। यह श्री भीमसेन आचार्य रचित जैनोला टीका है जो कसाय पावर तथा शून्य सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गंधर भट्टारक तथा इतिशुभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 12वीं पुस्तक में अभी हम सम्यक अनुयोग द्वार देख रहे हैं और पृष्ठ संख्या है 221। दर्शनों की उपशम यानी प्रथमोपशम सम्यक के संबंध में यहाँ अपनी चर्चा चल रही है। तो यहाँ हमने ये बात कल सूत्र में पढ़ी थी, सूत्र का अर्थ दोबारा देखते हैं। 121 में नीचे का जो सूत्र है, दर्शन मोह के उपशामक के असाता वेदनीय स्त्रीवेद नपुसवेद अरति शोक चार आयु नरक गति चार जाति पांच संस्थान पांच सहनन नरक गति प्राज्ञान पूर्वी आतप प्रशस्त विहार गति स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण अस्थिर अशुभ दुर्भग दुस्वर अनादेय और अयशस कीर्ति, ये प्रकृतियाँ पहले बंद से पहले ही विच्छिन्न हो जाती, यानी बंद की विच्छुति पहले ही हो जाती, यानी बंद रुक जाता है। हाँ, बंधापसरण कहेंगे, इसी को बंधापसरण कहते हैं। एक्चुअली ये जो बंध विच्छुति है वो ऊपर के गुण स्थानों में जाने पर कहलाएगी, फिर भी कहीं कहीं इसको विच्छुति कहते हैं, फिर भी हम जो विच्छुति याद करते हैं उसमें और इसमें अंतर है। सूत्र में निर्दिष्ट की गई इन प्रकृतियों की दर्शन मोह के उपशामक जीव के पहले ही क्रम से बंध विच्छुति हो जाती है, यह उक्त कथन का तात्पर्य। हमें पता है पहले इन्हें प्रायः लब्धि नहीं होता। अब इन कर्मों के बंध विच्छुति के क्रम को बतलाएंगे, क्या एक साथ ही बंध विच्छुति होती है तो कैसे नहीं। यथा वहाँ जो अभव्यों के योग्य विशुद्धि से विशुद्ध हो रहा है, अभव्य जीवों में जहाँ तक की विशुद्धि प्राप्त हो सकती है वहाँ तक विशुद्ध होकर उसके तत्प्रायोग्य अंतकोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति बंध की अवस्था में बंध भी उनका अंतकोड़ा कोड़ी प्रमाण हो रहा है, एक भी कर्म के प्रकृति बंध की विच्छुति नहीं होती। जहाँ तक नहीं हुई वहाँ तक की बात बताई, अभी इससे आगे जाके होगी। अभव्य में उत्कृष्ट विशुद्धि यानी वो संगी पंचेंद्रिय में लेना, संगी पंचेंद्रिय प्राग्य लब्धि के कालिक वाली लेना, इससे आगे अंतर्मूर्त जाकर सागरोपम पृथक्त्व प्रमाण बंद करने वाले सागरोपम पृथक्त्व प्रमाण स्थिति घटाकर अन्य स्थिति का बंद करने वाले जीव, यानी यहाँ स्थिति बंधापसरण होने लगा। तो कितना घटाया उसने, तो कहते सागरोपम पृथक्त्व प्रमाण, हमने पढ़ा है इसलिए पता है कि 700 से 800 सागर, दो चार पांच नहीं, पृथत्व में हम 3 से 8 लेते हैं, परंतु यहाँ तो 700 से 800 सागर एवरी टाइम जब घटेगी, यानी उसको 100 सागर पृथत्व कहा था लब्धिसार में। इसी को यहाँ सागरोपम पृथत्व कहा, 100 सागर पृथत्व ऐसा शब्द आया था। पृथत्व 100 सागर, 700 से 800 सागर ऐसा लेना, यानी उतनी स्थिति घटाकर अभी नया स्थितिबंध होने लगा है। जहाँ विशुद्धि बढ़ती है वहाँ स्थिति घटकर बंधी जाती है। अंतर्मूर्त एक नियम ये है, जो कोई स्थिति बनती है अंतर्मूर्त तो उतनी की उतनी बनती है, अंतर्मूर्त के बाद फिर उसमें कटौती होगी, फिर नया स्थितिबंध होगा। तो ये तो 700 और 800 सागर एक झटके में एक अंतर्मूर्त में कम नहीं होगा, एवरी टाइम कितना होगा, तो जो यथा जो पल्ले का संख्या का असंख्या का भाव इतना करते 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 जाके
एक,
हाँ पल्ले का संख्या का भाग में दिखा दी, क्योंकि संख्यात बंधाक्षरण हो जाए। हाँ एक बंधाक्षरण यानी एक एक बार वो स्थिति बंद होता है वो अंतर्मूर्त, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, चौथी बार, ऐसी संख्या 1000 हो जाएगी, तब जाके 700 से 800 सागर स्थिति घटेगी। तो उसके उस समय नरकायु के बंद विच्छित होती है। सबसे पहले में पहले पेज नंबर है 222 पर, ये प्रकृति बंधापसरण के स्थान है। यहाँ इस नाम से नहीं बताया, यहाँ तो बंद विच्छित पहले होती है बता रहे हैं। उससे आगे सागरोपम पृथक्त्व प्रमाण स्थिति घटाकर बंद करने वाले जीव के तिर्यंचायु के बंध विच्छित होते हैं। हम इसको नंबरिंग करेंगे, तिर्यंचायु को 2 नंबर दें। उससे आगे सागरोपम पृथक्त्व प्रमाण स्थिति घटाकर बंद करने वाले जीव के मनुष्यायु की बंध की विच्छित होती है। यहाँ से बंधना रुक जाता है तो करण लब्धि में भी नहीं बंधेगी और आगे चलकर उत्तम समय तक के काल में भी नहीं बंधेगी। उससे आगे सागरोपम पृथक्त्व प्रमाण स्थिति घटाकर बंद करने वाले जीव के देवायु की बंध विच्छित होती है। उससे आगे सागरोपम पृथक्त्व प्रमाण स्थिति घटाकर बंद करने वाले जीव के नरक गति और नरक गत्यानुपूर्वी की एक साथ बंध विच्छित होती है। ये दोनों को मिलकर 5 नंबर देंगे, क्योंकि हमें प्रकृति बंधाक्षरण के स्थान देखने हैं। 5वें स्थान पर नरक गति और नरक गत्यानुपूर्वी दोनों की एक साथ बंधी स्थिति होती है। उससे आगे सागरोपम पृथक्त्व प्रमाण स्थिति घटाकर अन्योन्य अनुगत, ये घटाकर के आगे 0 क्यों लिखा, ऊपर क्या लिखा था, घटाकर बंद करने वाले जीव के, ये सब समझना, इसलिए वहां 0 लिखते हैं। समझ में आएगा, शॉर्ट फॉर्म कर दिया कि ऊपर जो हर बार बता रहे थे ना, घटाकर बंद करने वाले जीव के ये जो बात है वो समझ लेना। यहाँ पर अन्योन्य अनुगत सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण शरीर की एक साथ बंद विच्छित होती है। अन्योन्य अनुगत यानी यहाँ तो समूह रूप से ऐसा समझ, यानी सूक्ष्म अपर्याप्त की बंद विच्छित हुई है परंतु बादर अपर्याप्त की नहीं हुई है। समझ में आई बात, यानी अपर्याप्त का बंद रूप नहीं गया, सूक्ष्म के साथ अपर्याप्त और साधारण का रूप गया। साधारण का बंद बादल के साथ भी अभी हो रहा है, वो आगे जाके रुकेगा। तो इसका नंबर हमने 6 दिया, एक साथ बंद विच्छित होती है।
यहाँ पे ये साधारण शरीर के साथ ये सूक्ष्म अपर्याप्त लगाना है ना,
सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण नहीं, सूक्ष्म नाम कर्म है, अपर्याप्त नाम कर्म है, हाँ होगा ना, इसीलिए अपर्याप्त की अभी नहीं हुई है टोटल। अपर्याप्त तो बादर के साथ भी लगेगा, अपर्याप्त तो द्विंद्र के साथ भी लगेगा, अपर्याप्त तो असंगी के साथ भी लगेगा, आगे चलते हुए सूक्ष्म प्लस अपर्याप्त यानी इसको संयोग रूप से कहते हैं। सूक्ष्म का अपर्याप्त यहाँ रुके, यानी सूक्ष्म के साथ अपर्याप्त यहाँ रुके, परंतु अभी बांदर के साथ अपर्याप्त तो बंधेगी, उन्हें अपर्याप्त नाम कर्म की बंधी हुई स्थिति नहीं हुई। सूक्ष्म के साथ अपर्याप्त वाली की रुचि, अभी सूक्ष्म के पर्याप्त की भी नहीं रुचि, यानी हम ऐसा भी नहीं सकते कि सूक्ष्म की बंधी हुई स्थिति नहीं। सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण ये कॉम्बिनेशन यहाँ बंधना रुक गया। अन्य अन्य अनुगत हाँ, यानी परस्पर का ये संयोग रूप से तीनों का यहाँ बनना रुक जाएगा। तो 22 पर है हम, तो अभी तक हमने छह देखे, बंद बंधापचरण के छह स्थान देखे, उसको बंद विच्छित कह रहे हैं अभी। तो उससे आगे सागरोपम पृथक्त्व प्रमाण स्थिति घटाकर बंद करने वाले जीव के समझ जाए, इसलिए यहाँ जीरो लिखा है, यानी वो आगे का पूरा वाक्य समझ गए। अन्योन्य अनुगत, अभी क्या लिखा है, सूक्ष्म अपर्याप्त और प्रत्येक शरीर, वहाँ साधारण लिया था, यहाँ सूक्ष्म अपर्याप्त और प्रत्येक लिया, तीनों का कॉम्बिनेशन यहाँ रुकेगा, क्योंकि तीन प्रकृतियां है तो अलग अलग,
पर यहाँ पे कंबाइन लेना है।
हाँ, कंबाइन में लेना है। तो सूक्ष्म अपर्याप्त प्रत्येक कौन सी पर्याय में होगा?
वनस्पति नहीं,
अच्छा
सूक्ष्म अपर्याप्त प्रत्येक।
हाँ,
वो तो रेखें जी गोविंद जी तीन जी कृष्ण जी,
अरे 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 अरे
नहीं, एक मिनट
बोलो। सूक्ष्म
अपर्याप्त,
अभी अभी आपका नंबर गया, सूक्ष्म अपर्याप्त और प्रत्येक, नहीं पांचों में नहीं होता,
वनस्पति में ही होता,
वनस्पति में नहीं होता है, प्रत्येक वनस्पति सूक्ष्म नहीं होती। सभी सभी पृथ्वी वनस्पति को छोड़कर अन्य पर्याप्त होते हैं, सूक्ष्म नहीं होते, प्रत्येक वनस्पति सूक्ष्म नहीं होती, इसलिए एकेंद्रियों के 11 भेद करते हैं, क्योंकि सूक्ष्म और बादल मिलकर उसमें साधारण को रखना, उसमें सूक्ष्म भी होता है बादल भी होता है, और प्रत्येक वनस्पति मात्र बादल ही होती है, ऐसे 11 भेद एकेंद्रियों के।
ऐसे वनस्पति सूक्ष्म होती है,
वनस्पति सूक्ष्म होती है मगर वो साधारण होती है, प्रत्येक वनस्पति सूक्ष्म नहीं होती,
बादर योगी,
बादर योगी। सूक्ष्म पर्याप्त और प्रत्येक शरीर की एक साथ बंधी हुई स्थिति होती है, पहले कभी ये ऐसा विचार प्रश्न भी नहीं आया था, अभी सहज रूप से आया। उससे आगे मिला ना मैं बीच में है, एग्जैक्ट सेंटर में ही है, अपन नीचे दोनों तरफ से ले लो इसलिए कहा। हाँ, हम उसको नंबरिंग कर रहे हैं, ये बंधाक्षरण के स्थान बता रहे हैं। पहले हमने नरकायु देखा, दूसरा तीरियन चाहिए, तीसरा मनुष्य चाहिए, चौथा देवायु, पांचवें स्थान पर नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी दोनों, छठे स्थान पर कॉम्बिनेशन लेना है सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण, और अभी सातवें नंबर पर सूक्ष्म अपर्याप्त और प्रत्येक। इसलिए यहाँ प्रश्न पूछा था, सूक्ष्म अपर्याप्त प्रत्येक में कौन कौन से पर्याय वाले जीव हो गए, वनस्पति में ये प्रत्येक को सूक्ष्म टाइप नहीं होता है, परंतु जो अन्य जो प्रत्येक शरीर है ना, पृथ्वी का एक है, अग्नि का एक है,
जल का एक है, उसमें
सूक्ष्म में अपर्याप्त भी होगी, सूक्ष्म भी होगी और अपर्याप्त भी होगी। अब आगे पढ़े, उससे आगे सागरोपम पृथक्त्व प्रमाण स्थिति घटाकर बंद करने वाले जीव के, ये हर बार मैं बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ तो जीरो लिखा है ना, मैंने उसके बीच में जो वाक्य ऊपर हम बोलते आए थे वो यहाँ पर भी बोलना चाहिए। अन्योन्य अनुगत यानी ये कॉम्बिनेशन यहाँ रुकेगा। कौन सा? बादर, अपर्याप्त और साधारण, क्योंकि आगे बादर भी बंधेगा। बादर की तो बंदी उसी की होगी नहीं, क्योंकि संगी पंचमी का बंध तो रुकेगा नहीं लास्ट तक, तो बादर का बंध होगा। परंतु ये कॉम्बिनेशन है, किसके साथ बादर नहीं बंधेगा जी? बादर, अपर्याप्त और साधारण। शरीर की एक साथ बंध विच्छित होती है। आठ नंबर। उससे आगे सागरोपम पृथक्त्व प्रमाण स्थिति घटाकर बंद करने वाले जीव के अन्योन्य अनुगत बादर, अपर्याप्त और प्रत्येक, ये 9 नंबर। बादर, अपर्याप्त और प्रत्येक शरीर के एक साथ बंधी हुई स्थिति होती है। अब यहाँ कौन कौन से पर्याय वाले हैं? अभी 5 चल रहा है। उससे आगे सागरोपम पृथक्त्व प्रमाण स्थिति घटाकर अन्योन्य अनुगत द्विंद्रिय जाति और अपर्याप्त नाम कर्म की एक साथ बंध विच्छित होती है। बादर, अपर्याप्त, प्रत्येक, अच्छा अभी पर्याप्त तक नहीं गए, 9 हो गए। नहीं है 9 हो गए, अभी 10वां नंबर है द्विंद्रिय और अपर्याप्त। उससे आगे सागरोपम पृथक्त्व स्थिति घटाकर बंद करने वाले जीव के अन्योन्य संयुक्त, संयुक्त बताए ना, अनुगत कहा और संयुक्त का एक ही बात है, यानी ये संयोग रूप से इनका बंध चल रहा है, उसकी बंध विच्छित है। इसमें से सिंगल सिंगल प्रकृतियों की बंध विच्छित नहीं कहलाएगी, क्योंकि बादर भी बंद रहे, अपर्याप्त भी आगे चलकर बंद रहेगी, तीन्द्रिय का भी बंद होगा क्योंकि पर्याप्त नाम कर्म के साथ आगे उसका भी बंध चलेगा। तो ये 11 नंबर, इंद्रिय और अपर्याप्त नाम कर्म की एक साथ बंधी विच्छित होती है। उससे आगे सागरोपम पृथक्त्व प्रमाण स्थिति घटाकर बंद करने वाले जीव के अन्योन्य संयुक्त चतुरिंद्रिय जाति और अपर्याप्त नाम कर्म की एक साथ बंध विच्छित होती है, ये 12 नंबर। उससे आगे सागरोपम पृथक्त्व प्रमाण स्थिति घटाकर बंद करने वाले जीव के अन्योन्य संयुक्त असंगी पंचेंद्रिय और अपर्याप्त नाम कर्म की एक साथ बंध विच्छित होती है। 13 हुआ ना। उससे आगे सागरोपम पृथक्त्व प्रमाण स्थिति घटाकर बंद करने वाले जीव के परस्पर संयुक्त, ऊपर अन्योन्य लिखा था उसी का अर्थ परस्पर संयुक्त, संगी पंचेंद्रिय और अपर्याप्त। संगी पंचेंद्रिय का बंध रुकेगा नहीं, परंतु अपर्याप्त संगी पंचेंद्रिय का रुकेगा। तो संगी पंचेंद्रिय और अपर्याप्त ये जो कॉम्बिनेशन है वो यहीं तक बन सकता है, इससे आगे नहीं है। एक साथ बंध विच्छित होती है। उससे आगे सागरोपम पृथक्त्व प्रमाण स्थिति घटाकर बंध करने वाले जीव के परस्पर संयुक्त, अब ये वाला कॉम्बिनेशन यहाँ सूक्ष्म, पर्याप्त और साधारण। पहले हमने कौन सा देखा था? सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, 6 नंबर पर देखा। उसके बीच में सभी अपर्याप्तों को लाया। तो 6 नंबर पर सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण था। 7 पर सूक्ष्म, अपर्याप्त, प्रत्येक था। 8 पर बादर, अपर्याप्त, साधारण था। 9 पर बादर, अपर्याप्त, प्रत्येक था। फिर 10 से आगे द्विंद्रिय अपर्याप्त, फिर तीन्द्रिय अपर्याप्त, चतुरिंद्रिय अपर्याप्त, असंगी अपर्याप्त और संगी अपर्याप्त, 14 तक आए। ये सभी अपर्याप्तों को यहाँ घटा दिया, यानी यहाँ पर अपर्याप्त की बंधी हुई स्थिति कहलाई, अपर्याप्त सिंगल वाले। अभी तक अन्य अन्य के साथ कॉम्बिनेशन में बंध रहा था, अब इसके आगे पर्याप्तों की बात करेंगे।
इसे भी एक इंद्रिय से चतुर्द्रिय के बंध की स्थिति यहाँ पे ही होती है, क्योंकि अभी ये जीव चौथे गुण स्थान में जाने वाला है।
अभी तो समय को प्राप्त करेगा, हाँ। इसके पहले ही, और ये तो प्रायोग लब्धि है, ये तो अभवयों के भी होगी,
हाँ, करण लब्धि, पर ये ऐसे भी ये गुण स्थान में, पहले गुण स्थान में यहाँ पे ही होगी, क्योंकि पहले से में चौथे पहले से चौथे में जाने वाले की बंद विच्छेदी होती है।
वो बंद विच्छेदी जो हम आखिर के समय तक होती है, बंद होता है उसको बंद विच्छेदी कहते हैं। वो एप्लीकेशन वो ड्यूल यहाँ नहीं लगेगा, वो लक्षण वो डेफिनेशन
नहीं तो वेदक शब्द
इसको बंधापसरण कहेंगे।
पर जो वेदक शब्द को प्राप्त करेगा उनकी बंद की विच्छेद अंत तक अंतिम समय तक होगी।
नहीं वहाँ भी वो यथायोग्य विशुद्धि होती है, बिना विशुद्धि के वहाँ भी नहीं होगी। हाँ तो यथायोग्य हो जाएगा, इसके अलग से नाम नहीं है। अभव्य में भी होते हैं बंधापसरण सभी
नहीं होते? नहीं आगे नहीं लिखा है ना।
हाँ क्या लिखा
ये
क्या लिखा है? अभव्यों के योग्य विशुद्धि से विशुद्ध हो रहा। अभव्यों के योग्य विशुद्धि किसको कहते हैं? जो मिथ्या दृष्टि की जितनी हो सकती है उसको अभव्यों के योग्य कहते हैं।
हाँ तो उसके पश्चात इसके आगे अंतर्मुख जाकर ये सागर पुस्तकम ये लास्ट है।
योग्य लब्धि में बंधापसरण होते हैं, वो अभव्यों के भी होते हैं सभी बंध विच्छेद की। अभव यानी जहाँ वो प्रायोग्य लब्धि में जहाँ तक वो मिनिमम विशुद्धि उसके आगे भी बन रही है। प्रायोग्य लब्धि में भी विशुद्धि तो बन रही है और प्रायोग्य लब्धि के पूरी प्रायोग्य लब्धि भी अभव्य में होती है। अरे अभव्यों के योग्य कहने की पद्धति है क्योंकि हमने पहले भी देखा था एक इंद्रियों में जाता है कोई भी और वहाँ जो जघन्य बंध या हस्तसमुचित करता है उसका नाम देते हैं अभव्यों के योग्य। यानी अभव्य जीवों में भी वो हो सकता है इसलिए अभव्यों के योग्य।
नहीं भी क्या समझा यहाँ की क्या लिखा है? यहाँ जो अभव्य का योग्य है विशुद्ध से विशुद्ध हो रहा है उनके तत्प्रायोग्य अंत कोड़ा कोड़ी समान स्थिति बंध की अवस्था में एक भी कर्म के प्रस्तुति बंध की विच्छुति नहीं होती। इससे आगे अंतर्भूत आगे सागर सागरोत्तम पुस्तक का प्रमाण
रेगुलर रेगुलर अभी ये प्रायोगिक लब्धि में बढ़ रहा है विशुद्धि की ओर फिर भी प्रायोगिक लब्धि अभव्यों में भी होती है ये बिल्कुल सुनना आप। हाँ नॉर्मल कंडीशन में अभव्यों के योग्य ने भव्यों के अभव्यों के इसके आगे नहीं होते ये बात नहीं है क्योंकि हमने कितनी बार पंचलब्धि निकाल के देखी और उसमें भी मन से तो नहीं लिखा है।
तो आगे के पुस्तक में लिखा था ना इसलिए मैं भी इसे ही सोच रहा था।
वहाँ तो एक केवल उन्होंने एक लिमिट बताई उसके आगे अभी ये बंधापसरण शुरू होता है इतना कहना है। मैं पूछना जरूर क्योंकि हाँ यानी हमने देखा ना पहले अन्य जो होती है सब तो एक साथ होती है तो प्रायोगिक लब्धि के अंतर्मूर्त बिताने पर जो पहले ही पहले उनका स्थिति बंधा स्थिति कांड घात और अनुभव कांड घात हो जाता है शुरू में और फिर ये सारी बातें
स्थिति
बंधापसरण चालू हो जाता है।
तो अभव्य में भी इसकी प्रकृति की बंध की विच्छेद हो जाएगी।
विच्छेद नहीं कहेंगे हम इसीलिए मैंने कहा उसको विच्छेद के नाम इसलिए नहीं देते उसको बंधापसरण कहेंगे। जब तक मिथ्या तो बन रहा है अनंत अनुबंधी आखिर के समय तक बन रहा है इस किसी भी प्रकृति को विच्छेद नहीं कहेंगे और ना ही इसको संवर कहेंगे। इसकी भी चर्चा मैंने पंचलब्धि में की इसको अगर संवर मानेंगे तो एक कुछ काल के लिए विशुद्धि के कारण कुछ अशुभ प्रकृतियां बंधने से रुक गई है अभयों के भी होती है। तो जब हम पाप प्रकृतियां बांध रहे तब पुण्य प्रकृतियां नहीं बन रही तो वहां पुण्य का संवर मानना पड़ेगा। ये मूल पुस्तकों में भी बंध विच्छेदी कहां है फिर बाद में उसमें क्लियर किया है। ये जो हम पहले गुणस्थान के दूसरे गुणस्थान के बंध विच्छेद की कहते वो अलग है और यहाँ तो ये इसको इसका ओरिजिनल नाम है बंधापसरण। विशिष्ट प्रकृतियाँ यहाँ से बंधना रुक गई है उपशम समय से कई काल तक रुकी है आगे जाके बंधने वाली जैसे यहाँ मनुष्य आयु कहते हैं और देवायु है यहाँ रुकी है चौथे गुणस्थान वाले की बंधा है बंधेगी कि नहीं बंधेगी? बंधेगी तो उसको वो बंध विच्छेद की नहीं कह सकते। हाँ बराबर जब प्राय की लब्धि में नहीं है ऑर्डिनरीली उसकी
तो
कितनी
उसके
मिनिमम
सभी
बनता है तो अंतकोड़े उसके योग्य अंतकोड़े। अब जो प्रायोगिक लब्धि में कंडीशन क्या है उसके साथ साथ सोक्षम लब्धि विशुद्धि लब्धि देशना लब्धि सभी के साथ प्रायोगिक लब्धि होती है। बिना उसके किसी के प्रायोगिक लब्धि हो जाए ये बात नहीं है। तो वो भी जो कुछ तत्व का विचार कर रहा है उस समय निर्णय को नहीं पहुँचा और ना ही पहुँचने वाला है और ना ही आत्मसन्मुखता को चाहेगा, परंतु उसके भी वो उस काल की जितनी विशुद्धि है उसके भी होती है। और पहले जो अभवेद ने योग्य बताया है तो बिना प्रायोगिक लब्धि के उसकी कितनी हो सकती है उसकी बात। ऑर्डिनरीली कोई भी जीव अभी संगी पंचेंद्रिय है ऑर्डिनरी जीव उसको ना सोक्षम लब्धि कहेंगे ना विशुद्धि लब्धि कहेंगे ना ही उसके देशना लब्धि कहेंगे। तो उसके कितना हो सकता है बंद मिनिमम अंतकोड़ा कोड़ी संगी पंचेंद्रिय की बात है। उसके आगे अंतर्मूर्त जाके क्यों अंतर्मूर्त में इतनी विशुद्धि हो गई उसकी देशना वगैरह सहित विशुद्धि लेना तो वो जीव जब प्रायोग लब्धि में है तो उसकी ये कंडीशन हो जाती है। देखो हम 223 पृष्ठ पर आए हैं। पहली लाइन पढ़ी थी 15 नंबर दिया था हमने सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण। अब यहाँ से पर्याप्तों की लिस्ट शुरू हो गई है। नाम कर्म की एक साथ बंधी स्थिति होती है उससे आगे सागरोपम पृथक प्रमाण स्थिति घटाकर बंद करने वाले जीव के परस्पर संयुक्त सूक्ष्म पर्याप्त और प्रत्येक शरीर यहाँ भी जो हमने पूछा था वैसे यहाँ भी लागू होगा। परस्पर संयुक्त संयोग रूप से वो कॉम्बिनेशन में ही उसको ले लेना अलग अलग प्रकृति की विक्षिप्ति नहीं हुई है। यहाँ कह सकते हैं ये सूक्ष्म वाला लास्ट पॉइंट है इसके आगे सूक्ष्म नहीं बन रही क्योंकि सूक्ष्म को हमने अपर्याप्त के साथ भी लिखा है और अभी पर्याप्त के और प्रत्येक शरीर के भी साथ लिखा है। यहाँ भी वो सूक्ष्म पर्याप्त प्रत्येक शरीर वाले कौन से हो गए वनस्पति को छोड़कर अन्य चार अन्योन्य का अर्थ परस्पर होता है
परस्पर
अभाव
हाँ परस्पर संयुक्त शब्द है अन्योन्य अनुगत कहा पहले एक साथ बंधने वाली हमने 16 नंबर दिया सूक्ष्म पर्याप्त और प्रत्येक शरीर नाम कर्म के एक साथ बंधी चुकी होती उससे आगे सागरोपम पृथक्त्व प्रमाण स्थिति घटाकर बंद करने वाले जीव के परस्पर संयुक्त बादर पर्याप्त और साधारण यानी पर्याप्त बादर अनुगत की बात है यहाँ पर यहाँ तक बंद हो सकता है। बादर पर्याप्त साधारण शरीर नाम कर्म की बंदी स्थिति होती है
ये वनस्पति का ही है ना
हाँ साधारण वनस्पति में ही
बादर पर्याप्त वनस्पति
साधारण जब कहेंगे तो
ये
घोटाला के अलावा कहीं नहीं प्रत्येक कहेंगे तो सब में है प्रत्येक जो है नाम कर्म वनस्पति में भी और अन्य सब में है वो सब चारों गति में ले लेते जब साधारण कहेंगे तो मात्र
वनस्पति
उससे आगे सागरोपम पृथक्त्व प्रमाण स्थिति घटाकर बादर पर्याप्त और प्रत्येक शरीर अभी यहाँ इतना ही में ही रुकना नहीं ये जो 18वां नंबर है क्योंकि एकेंद्रिय संबंधी सभी अभी हो चुके यहाँ पर तो उसमें बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर तो लेना ही लेना एकेंद्रिय जाति भी लेना क्योंकि इससे आगे एकेंद्रिय जाति नहीं बनेगी अब एकेंद्रिय के साथ बनने वाले आतप भी यहाँ तक ही ले लेना और स्थावर नाम पर अब तक तो बनता था यानी एकेंद्रिय आतप और स्थावर यानी टोटल 6 हो जाएगी 18 नंबर पर क्योंकि वो हमने 15 से लिए था ना सूक्ष्म पर्याप्त साधारण फिर 16वें में सूक्ष्म पर्याप्त प्रत्येक फिर बादर प्रत्येक पर्याप्त साधारण और बादर पर्याप्त प्रत्येक उसके साथ अभी एकेंद्रिय स्थावर आतप लगा लेना तो 6 हो गए। इन 6 प्रकृतियों की एक साथ बंधी स्थिति होती है उससे आगे सागरोपम पृथक्त्व प्रमाण स्थिति घटाकर बंद करने वाले जीव के यहाँ पूरा लिखा है द्वीन्द्रिय जाति, अभी एक एक जाति आगे बढ़ेंगे, 19 नंबर द्वीन्द्रिय जाति और पर्याप्त नाम कर्म के बंधन की उच्चित होती है। पहले हमने अपर्याप्त की लिस्ट में देखा था द्वीन्द्रिय पर्याप्त इंद्रिय पर्याप्त, वो यहाँ द्वीन्द्रिय पर्याप्त लेना। उससे आगे सागरोपम पृथक्व प्रमाण स्थिति घटाकर बंद करने वाले जीव के तीन्द्रिय जाति, ये 20 नंबर, तीन्द्रिय जाति और पर्याप्त नाम कर्म की बंद विच्छित्ति होती है। यानी कोई ऐसा नहीं कह सकता कि पर्याप्त नाम कर्म की विच्छित्ति, पर्याप्त तो बनता रहेगा, उसकी तो बंद विच्छित्ति होगी ही नहीं। यहाँ पर्याप्त नाम कर्म तो बाद में भी बनता रहेगा, तीन्द्रिय के साथ नहीं बनेगा। उससे आगे सागरोपम पृथक्त्व प्रमाण स्थिति घटाकर बंद करने वाले जीव के चतुरिंद्रिय जाति और पर्याप्त नाम कर्म की बंद विच्छित्ति होगी, इसको 21 नंबर देना। उससे आगे सागरोपम पृथक्त्व प्रमाण स्थिति घटाकर बंद करने वाले जीव के असंगी पंचेंद्रिय जाति, एक्चुअली जाति तो पंचेंद्रिय होती फिर भी वो स्पष्ट करने के लिए असंगी पंचेंद्रिय जाति और पर्याप्त नाम कर्म की बंद विच्छित्ति होती है। उससे आगे अभी हम पंचेंद्रिय जाति और पर्याप्त नहीं कह सकते क्योंकि उसका तो बंद चलता रहेगा, उसका बंद नहीं रुकेगा, थ्रू आउट चलेगा, इसलिए असंगी तक रुकना। अपर्याप्तों की लिस्ट की थी तभी संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त को भी लिया था उसने, अब पर्याप्तों की लिस्ट में संगी पंचेंद्रिय और पर्याप्त ये कॉम्बिनेशन छोड़ देना, उसका तो बंद होता रहेगा, असंगी तक ही रुकना। तो अभी देखो उससे आगे सागरोपम पृथक्त्व प्रमाण स्थिति घटाकर बंद करने वाले जीव के अब 23 नंबर इसको देंगे हम, तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी और उद्योत, इन तीन प्रकृतियों की एक साथ बंद विच्छित्ति होती है। जो उद्योत जो है वो तिर्यंच गति के सहित ही बनता है, जब गति बनती तो गत्यानुपूर्वी भी बनती बनती, तो ये तीन का कॉम्बिनेशन यहाँ पर ले लिया। मात्र एक इंद्रिय के आतप और उद्योग जो है वो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय, आतप मात्र वो सूर्य बिंब के जो पृथ्वी कायिक है उसमें होता है, उद्योगतर एक इंद्रिय सब में होता है, यानी चंद्रबिंब में भी है, वो जुगनू है उसमें भी है, पंचेंद्रियों में भी होता है उद्योग, तीन सौ में होता है। जब एक इंद्रिय की विच्छित्ति हो गई तब आतप को भी उसी समय निकालना है, जहाँ तक तीर्यन से गति बनती थी वहाँ तक आतप उद्योग को रखा था, जहाँ तीर्यन से गति की बंद विच्छित्ति कही यानी बंधा कर वहाँ उद्योग को भी निकाल शाइनिंग आतप में वो उष्णता सहित कही आतप और उद्योग में मात्र शाइनिंग है, परंतु वहाँ तो आतप नहीं,
गर्मी
गर्म
नहीं,
नहीं, नहीं है, गर्मी नहीं है,
गर्म नहीं है,
मात्र चमकीला
नहीं, उद्योग खाली
उद्योग की बात करें ना,
और आतप गर्मी से ही चलता है।
तो 23 नंबर पर हमने तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी और उद्योत, इन तीन प्रकृतियों की एक साथ बंद विच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपम पृथक्त्व प्रमाण स्थिति घटाकर बंद करने वाले करने वाले जीव के नीच गोत्र की बंद विच्छित्ति होती है। अकेला एक लिया नंबर 24 नीच गोत्र, देखो 15 सूक्ष्म पर्याप्त साधारण, 16 सूक्ष्म पर्याप्त प्रत्येक, 17 बादर पर्याप्त साधारण, 18 बादर पर्याप्त प्रत्येक एक इंद्रिय आतप स्थावर, 19 इंद्रिय उसके साथ पर्याप्त, 20 तीन्द्रिय पर्याप्त, 21 चतुरिंद्रिय पर्याप्त, 22 असंगी पर्याप्त, 23 गति, 3 गत्यानुपूरी उद्योग और 24 नीच गोत्र। कुछ रह गया होगा बीच में, इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथ्वी के नारकी के तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी उद्योत और नीच गोत्र की बंध विच्छित्ति नहीं होती, यानी बंधापचरण नहीं होता। वो जब सम्यक तो प्राप्त करेगा तब इसको नहीं बंधेगा, परंतु अभी प्रायः लब्धि के काल में उसके बंधापचरण में इसको नहीं, वो रहती है। जब तक समय को नहीं प्राप्त करता है तब तक तीरियन से गति को ही बांधता है। हमने महादंडक देखे ना सर, उसमें देखे, इसी में देखे कि
नहीं शाम को देखे,
अरे शाम को देखे,
अरे यहाँ पे देखे, यहाँ पे देखे, यहाँ पे देखे, तीन
महादंडक देखे, तीन दंडक यहाँ देखे थे, देखो देखो निकालो कौन कौन सी बनती है उसकी बात आई थी ना, प्रवेशक होता है क्या,
एक
क्या होता
मनुष्य बंध से और तीरियन की अपेक्षा देखा था।
हाँ, एक मनुष्य तीरियन का, एक देवगति का,
देवगति का,
एक
सातवें नरक का देखा था।
सातवें नरक का अकेले का अलग
अलग देखा था, ये छठे नरक तक और देवगति का सातवें देखा था।
इसको बांधता है ये बात आई थी ना, कहाँ गया इतना पीछे का, 198 तक चली है, 212 में किन कर्मांशों को बांधता है ये बात आई थी। तो ये सारे दंडक 211 से शुरू हुए थे। पहला दंडक मनुष्य और तीरियंशों के जो भेद बताए थे सार, उसकी बात है। दूसरा महादंडक है देवगति और छह नरक तक को देखा। तीसरा महादंडक सातवें नरक में रहे। अब यहाँ आते अपने
यहाँ पे ये जो तीरियन गति की विच्छुति यहाँ पे बताई है, तो यहाँ विशुद्धि की अपेक्षा जो दूसरे गुण स्थान में बंधक की विच्छुति कही है, तो जो चौथे से दूसरे में आता है उसकी विशुद्धि कम होगी ये मिथ्या को गुण स्थान से।
देखो यहाँ क्या बात हो रही है, यहाँ दर्शन मोह की उपशमना करने वाला अभिजीत
विशुद्धि की ओर बढ़ रहा है,
उसके बंधापसरण हो रहे हैं, प्रकृति बंधापसरण और स्थिति बंधापसरण। तो उस काल में कौन कौन सी प्रकृतियां यहाँ से बंधना रुकी है उसकी बात है, ये बाद में उसकी बंधेगी।
नहीं अभी ये जीव तो नियम से, अभी ये जीव ऐसे भव्य होगा तो यहाँ से
भव्य की बात नहीं, अभव्य भी होगा तो भी उसके बंधेगी, बंधापसरण होगा, ये बात चल रही है। मैंने कितनी बार कहा अभव्य में भी ये सभी के सभी
अभव्य में भी होगा, पर अभी ये जीव शायद अभी सबने प्राप्त किया और संयुक्त से गिर कर दूसरे गुण स्थान में आया, तो उसको तीरेन गति तीरेन गति आना पूर्वी का बंध चालू हो गया,
वहाँ पर है इसका
हाँ बंध चालू हो गया है। तो यहाँ पे जो विशुद्धि है उससे दूसरे गुण स्थान ऐसे नहीं विशुद्धि कम होगी, यहाँ पे जो विशुद्धि है उससे दूसरे गुण स्थान में विशुद्धि,
विशुद्धि की अपेक्षा केवल शुभराग रूप नहीं लेना,
तत्वों
संबंधी जो परिणामों की निर्मलता है उसको भी लेना है। एक बार अभी इसकी तो नहीं हुई है, अभव्य है उसकी तो नहीं हुई है, परंतु ऐसा लेना है अभी यहाँ तो आयु नहीं बनती है और चौथे वाले को आयु बनती है, छठे वाले को आयु बनती है, देवायु बनती है और यहाँ रुक गई है, ऐसा वहाँ का स्वरूप है परिणाम। हर एक कंपेरिजन नहीं कर सकते हमें, ये मिथ्यात्व की अवस्था में होते हुए उपशम समय को प्राप्त करने के सम्मुख है कहो या चार लब्धि प्राप्त हुए ऐसा कहो, क्योंकि इसमें से सभी जीव तो उस समय को प्राप्त करने वाले नहीं,
नहीं है।
कितने भव्य भी यहाँ तक आके फिर वापस
जाएंगे
और कितने अभव्यों को भी ये प्राप्त हो सकता है, वो तो आगे जाने वाले है ही नहीं है। तो हमने अभी 24 नंबर को देखा मात्र नीच गोत्र, और वहाँ ये भी विशेषता बताई है कि सातवीं, क्योंकि ये तो मार्गणाओं में तो अलग अलग होगा, ये तो बंधापसरण चारों गतियों की अपेक्षा जिन जिन के होता है उसका एक क्रम बताए, उसमें विशिष्ट गति वालों को कौन सा होगा वो बात बाद में बताएंगे, सभी बंधापसरण सभी गति वालों के नहीं होंगे। इसलिए सूत्र में इनकी बंध विच्छुति का निर्देश नहीं किया। उससे आगे सागरोपम पृथक्त्व प्रमाण स्थिति घटाकर बंध करने वाले जीव के अभी कॉम्बिनेशन देखो, अप्रशस्त विहायोगति दुर्भग दुस्वर और अनादेय, इन प्रकृतियों की एक साथ बंध विच्छुति होती है। ये नंबर है 25। अभी ऑर्डिनरीली इनकी बंध विच्छेद कहाँ पर है? दूसरे में है। अब यहाँ तो इस जीव के लिए यहाँ पर ही बंधापसरण हो गया है, उत्तम समस्त के काल में भी नहीं बंधेगी, बाद में तो चौथे में जाएगा, वहाँ बनने का सवाल है। उससे आगे सागरोपम पृथक्व प्रमाण स्थिति घटाकर बंध करने वाले जीव के पुंड संस्थान और असंप्राप्ता सुरुपाटिका सहनन, इन दोनों प्रकृतियों की एक साथ बंध विच्छित्ति होती है। ये नंबर 26। वैसे तो इसके पहले गुणस्थानों में बंध विच्छित्ति देखी थी। उससे आगे सागरोपम पृथक्त्व प्रमाण स्थिति घटाकर बंध करने वाले जीव के नपुसक वेद की बंध विच्छित्ति होती है। 27 नंबर। उससे आगे सागरोपम पृथक्त्व तो चाहिए तो बह हुआ है, सागरोपम पृथक्त्व प्रमाण स्थिति घटाकर बंद करने वाले जीव के वामन संस्थान और कीलित होता है ना, कीलित करना, कीलित सहनन कैसा आया? वामन संस्थान कीलित, कीलित बराबर है, धनारस नाराज है, धनारस कीलित है बराबर। इन दो प्रकृतियों की एक साथ बंध विच्छेद की होती है। ये नंबर है 28। उससे आगे सागरोपम पृथक्त्व प्रमाण स्थिति घटाकर बंद करने वाले जीव के कुब्जक संस्थान और अर्धनाराश सहनन, 29 नंबर। इन दो प्रकृतियों की एक साथ बंद विच्छेद की होती है। उससे आगे सागरोपम पृथक्त्व प्रमाण स्थिति घटाकर बंद करने वाले जीव के स्त्री वेद की बंद विच्छेद की होती है, नंबर 30। उससे आगे सागरोपम पृथक्त्व प्रमाण स्थिति घटाकर बंद करने वाले जीव के स्वाति संस्थान और नाराज सहनन, इन दो प्रकृतियों की एक साथ बंद विच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपम पृथक्त्व प्रमाण स्थिति घटाकर बंद करने वाले जीव के न्यग्रोध परिमंडल, यहाँ हर एक की अलग अलग पोजीशन पर ले लें, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान और वज्र नाराज सहनन, इन दोनों प्रकृतियों की एक साथ बंध विच्छेद की होती है। उससे आगे सागरोपम पृथक्त्व प्रमाण स्थिति घटाकर बंद करने वाले जीव के मनुष्य गति, नंबर 33। औदारिक शरीर अंगोपांग, वज्रषभ नाराज सहनन और मनुष्य गत्यानुकूली, इन मनुष्य गति प्रायोजनापूर्वी लिखा है, इन पांच प्रकृतियों की हो गया, प्रकृतियों की एक साथ बंध विच्छित्ति होती है। आयु तो पहले ही निकाल दी थी, ये जिसको देवों के लिए चौथे में होता है, मनुष्यों के तीरेंशन के लिए दूसरे में, जिसकी बंध विच्छित्ति होती है, ऐसी प्रकृतियां थी, ऐसी तो वो छह होती है, जिसमें से मनुष्य ही तो स्टार्टिंग में ही लिया था, तो ये इसको यहाँ लिया 33 नंबर पर, आगे लिख लिया देख। यह तीरेंच और मनुष्यों की अपेक्षा कहाँ है? हाँ 33 हो गए, 33, क्योंकि देवों और नारकियों में इन पांच प्रकृतियों की बंजर चिति नहीं पाई जाती, क्योंकि वो तो बांधेंगे नहीं इसको, कुछ तो कोई तो गति तो बांधेंगे, तो वो तो इसी को बांधेंगे, और इसीलिए सूत्र में इनकी बंध विच्छित्ति का निर्देश नहीं किया गया, क्योंकि यह सूत्र चतुर्गति सामान्य की अपेक्षा प्रवृत्त हुआ है। उससे आगे सागरोपम पृथक्त्व प्रमाण स्थिति घटाकर बंद करने वाले जीव के असाता वेदनी अरति शोक अस्थिर अशुभ और अयशस्वी। मंजू बहन आपको बताने हमेशा कहाँ इनकी बंदी हुई थी। हाँ छठे में। तो यहाँ कुछ काल के लिए, इस काल में वो यहाँ नहीं बन गई। असाता वेदिनी अरति शोक अस्थिर अशुभ और अयशस्वी, इन प्रकृतियों की एक साथ बंध विच्छित्ति होती है। यद्यपि ये प्रकृतियां प्रमत संयत गुणस्थान तक बंध के योग्य है, फिर भी यहाँ इनकी बंध विच्छित्ति का कथन विरोध को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उन प्रकृतियों के बंध के योग्य संकलेश का उल्लंघन कर उनकी प्रतिपक्षभूत प्रकृतियों के बंध के निमित्त रूप विशुद्धि के वृद्धि को प्राप्त हुए सर्व विशुद्ध इस जीव के, इसको सर्व विशुद्ध कहा ना, उन प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होने में कोई विरोध नहीं पाया जाता।
तो यहाँ पे ये जो दूसरे गुरु साहब की अपेक्षा मैंने जो प्रेषण किया था वो भी यही संकलेश।
हाँ, छठवे वाले के इतने संकलेश हो सकते किस काल में कि वहाँ वो बन भी सकती है, परंतु यहाँ ऐसे विशुद्ध तो यहाँ नहीं बन रही।
जैसे हमने प्रकृति बंधा सर में 42 प्रकृति देखी थी, यहाँ पे ये कुछ एक्स्ट्रा बता।
42 कहाँ से याद आ गया?
मेरे को 42 याद।
चौथे स्थानों में 46 होते, यहाँ कितने गिने आपने?
नहीं यहाँ पे तो बराबर, क्यों ये
अभी तक कितने गिने प्रकृतियाँ कितने गिने?
कल जो हमने लिस्ट पढ़ा था उसपे 42 था।
कहाँ
ये जो सूत्र में जो लिस्ट है ना वो 42
सूत्र में कितनी बताई नहीं है उन्होंने।
हाँ ये भी बताया,
गति को नहीं बताया, ये बाकी जो बनने जो अन्य गतियों में बनती उसको नहीं लिया। वहाँ तिरंज गति तिरंजानुपूरी नीच गोत्र और उद्योग तीन चार को नहीं लिया। मनुष्य गति की भी बात नहीं ली,
नहीं ली है। औदारिक शरीर की बात नहीं ली है।
हाँ क्योंकि वो तो बनती है ना उनको, यानी जिस किसी के भी बंधेगी तो उनकी बंध विच्छित्ति ओघ की अपेक्षा नहीं कहेंगे हम। यहाँ अकेला नरक गति को लिया है ना। और कोई प्रश्न है?
नहीं।
इस प्रकार ओह से सूत्र के अनुसार प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति करें। यहाँ सामान्य रूप से चारों गतियों में घटित हो इस अपेक्षा से मुख्य कर ये 34 बंधाक्षरण कहे गए। जिन प्रकृतियों के विषय में कुछ अपवाद है उनके निर्देश तथास्थान टीका में किया गया। उदाहरणार्थ सातवें नरक का नारकी जीव प्रथम सम्यक के प्राप्त करने के सन्मुख होने के पूर्व भी तिरंज गति तिरंज गत्यानुपुरी और निज गोत्र का ही नियम से बंद करता रहता है, तथा इसी भूमिका में भी उद्योग का कदाचित बंद करता है। इसलिए इन प्रकृतियों की बंद विच्छित्ति करने वाले दो बंधापसरण सातवें नरक में नहीं बनते। हाँ यह बंधापसरण विशेषार्थ में लिया ना। इसी प्रकार प्रथम सम्यक्त के सम्मुख होने के पूर्व ही तिर्यंच और मनुष्यों के मनुष्य गति आदि पांच प्रकृतियों की यथास्थान नियम से बंध विच्छित्ति हो जाती है। ये मनुष्य तिर्यंचों के लिए जो 33 नंबर पर देखा था हमने पांच प्रकृतियाँ, वो मनुष्य तिर्यंचों की अपेक्षा से, इसलिए यह बंधापसरण केवल तिर्यंच और मनुष्यों की अपेक्षा कहा है शेष कथन सुगम है। यानी ये संपूर्ण जो है मनुष्य की। हाँ सूत्र में 9 नहीं, यानी ये पांच वाला कॉम्बिनेशन और पहले जो हमने 3 इंच गति वगैरह का देखा था
37 दिया है और ये 9 46
हो गया बराबर ही। क्या मैंने तो यहाँ कोई गिनी नहीं थी, मुझे तो पहले
मेरी गलत मान्यता थी।
मान्यता नहीं, कुछ बातें भूल जाते हैं ना। ये पहले तो जब हम बंधाक्षरण होता है, स्थिति बंधाक्षरण, प्रकृति बंधाक्षरण, नाम तो पढ़ लेते थे, उसका अर्थ कुछ मालूम नहीं पड़ता। तो फिर ख्याल आए कि क्रम से कुछ प्रकृतियां बंधना रूप में रुकती चली जाती है, बंध का अपसरण होना, घटना, प्रकृतियों का बंध घटते चला जाना, उसको प्रकृति बंधाक्षरण था। और स्थिति बंधाक्षरण, पहले अधिक स्थिति बनती थी वो कम होती चली जाती कंटिन्यूस में, तो उसको स्थिति बंधाक्षरण। जब पंचलब्धि लिखी ना तभी उसका खुलासा बहुत हुआ, बहुत ज्यादा खुला। उस समय तो वो तो अनुवाद से भी लिखने में क्या है, स्वयं प्रस्तुत करना है विषय, तो उसको और ज्यादा डिटेल में सोचते हैं, तो उसकी सूक्ष्मता ख्याल में आ जाता है। मुझे याद है सर, जब पहली बार पंचलब्धि का क्लास लिया था जयपुर में, तो यशपाल जी वगैरह सभी आए थे, उन्होंने पंचलब्धि पुस्तक भी पढ़ी थी, उन्होंने बताया आज मेरे ख्याल में ये आ गया क्या, जैसे हम भी पढ़ते थे वैसे उन्होंने भी पढ़ना और सिखाना वो भी करते थे, जैसे अभी इसकी डिटेल्स और इसकी सूक्ष्मता ख्याल में आई। उनकी जैसे कर रहे थे हाँ, ये तो है ना, ये तीर्यंचों की अपेक्षा मुख्यता कहा, ये जो बंधाक्षरण है केवल तीर्यंचों और मनुष्यों की अपेक्षा कहा, मनुष्यों में ये सब घटित हो गया,
तीर्यंच पे घटित हो,
देवों में, हाँ मनुष्य और
तीर्यंच में ये दोनों गतित होगी,
देवों में
तीर्यंच गति के नहीं होगी, तीर्यंच गतियां में पूरी की नहीं होगी,
देवों में तीर्यंच गति का
होगा,
मनुष्य का नहीं होगा,
और सातवें
नरक का वाला कॉम्बिनेशन है,
और सातवें नरक
वाले के ये तीर्यंच गति वाला नहीं होगा। अब आदेश द्वारा, ये तो ओग में देखा हमने, आदेश द्वारा प्रकृति बंध संबंधी क्षीण अक्षीण पने विषय कुछ प्ररूपणा करते, क्षीण होना इन्हें रुकना घटना, यथा आदेश से चारों ही गतियों में ज्ञानावरणी के प्रकृति बंध का विच्छेद नहीं है, ये जो ध्रुव बंदी है ना वो तो बनती रहेगी, इसी प्रकार दर्शनावरण की अपेक्षा भी कहना चाहिए।
यहाँ पे चारों गति बताइए ज्ञानावरण के लिए।
हाँ, वेदनी की असाता प्रकृति बंध से विच्छिन्न है, साता वेदनी नहीं, हमने देखा था ना वो असाता वेदनी, और जिसके जो हमने 34वें स्थान में देखे थे, मोनी कर्म की स्त्री वेद, नपुसक वेद, अरति और शोक बंध से विच्छिन्न है, शेष मोह प्रकृतियां बंध से विच्छिन्न नहीं होती। हाँ, विच्छिन्न होने ने बंध रुक जाना, विच्छित्ति जिसको कहते हैं, क्योंकि पुरुष वेद का तो बंध होगा ही होगा, हास्य रति का भी होता रहेगा, और अब भी मिथ्या तो अनंत अनुबंधी आदि सभी बन रहे, मिथ्या तो सोला कचार वैजी रूप का तो बंद ही रहे, ये करण लब्धि के अंतिम समय तक बंधेगी। यानी यहाँ जो ऑप्शनल था ना रति शोक या हास्य रति वाली बात, तो उसमें हास्य रति का ही बंध है, पुरुष वेद का ही बंध है। आयु कर्म की चारों ही प्रकृतियां बंध से विच्छिन्न है, नाम कर्म की यदि प्रथम पृथ्वी से लेकर छठी पृथ्वी तक का नारकी है तो उसके नरक गति, तीर्यंच गति, देवगति, एकेंद्रीय जाति, द्विंद्रीय जाति, तीन्द्रीय जाति, चतुरिंद्रीय जाति, वैक्रिक शरीर, आहारक शरीर, पांच संस्थान, दो अंगोपांग, पांच स्वयनन, नरक गत्यानुपूर्वी, तीर्यंच गत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहाय गति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, अयशस्, कीर्ति और तीर्थंकर, ये प्रकृतियां बंध से विच्छिन्न है, रुचि डबल च हुआ शेष नहीं। वो तो बनती ही नहीं ना। क्योंकि हमने पहले देखा कि दर्शन मोहनी के उपशम करने वाले के उसको तो बंद ही नहीं है, और नरक में तो मिथ्यादृष्टि के तो होगी नहीं, और वहाँ कोई औक्षमिक समय तो प्राप्त नहीं करेगा तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले। गोत्र कर्म की नीच गोत्र प्रकृति बंध से विच्छिन्न है, उच्च गोत्र नहीं। अंतराय कर्म के प्रकृति बंध का विच्छेद यहाँ नहीं है। सातवें पृथ्वी में इसी प्रकार जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि उद्योग प्रकृति कदाचित बंध से विच्छिन्न है, कदाचित विच्छिन्न नहीं है। यानी किसी के बंधे की भी ना, क्योंकि जब तक प्रकृति तिर्यंच गति बन रही है, तिर्यंच गति तिर्यंच गत्यानुकूल और नीच गोत्र ये बंध से विच्छिन्न नहीं है। ये सातवें नरक के लिए खास बात है। मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुकूल और उच्च गोत्र ये बंध से विच्छिन्न है। यानी वो नियम से तिर्यंच गति का नीच गोत्र का ही बंध कर रहे हैं, जब समय को प्राप्त करेंगे तब इनको बांधेंगे। यदि तिर्यंच और मनुष्य है तो उसके नाम कर्म की देवगति पंचेंद्रिय जाति यानी क्या क्या बनता है उसकी बात चल रही है। तिर्यंच मनुष्य है तो विच्छित्ति किस किस की नहीं होगी वो बात बता रही
है।
नाम कर्म की देवगति पंचेंद्रिय जाति वैक्रियक शरीर तेजस शरीर कार्मण शरीर समचतुरस्य संस्थान वैक्रियक शरीर अंगोपांग वर्णादि चतुष्टय देवगति प्राज्ञानपुरु अगुरु लघु आदि चार प्रशस्त विहार गति त्रसादि चार स्थिरादि छह और निर्माण इन प्रकृतियों को छोड़कर यानी इनका बंध है
हो गए।
शेष प्रकृतियां बंध से विच्छिन्न है। नाम कर्म की चल रही ना तो नाम कर्म की देवगति सहित कितनी बनती हमने कहा था कल
वैक्रिय सतत
28 एक गिनो अभी यहाँ कितनी कही देवगति पंचमी से दो हो गया तीन वैक्रिय शरीर चार तेज शरीर पांच कार्मण शरीर छह समचतुर संस्थान सात वैक्रिय अंगोपांग वर्णादि चतुष 11 हुआ देवगत्यानुपुरी 12 अगुरु लुगादि चार 16 प्रशस्त व्यागति 17 प्रसादि चार 31 स्थिरादि 6 27 और निर्माण 28 है ना बराबर। देवगति सहित वाला देवगति युक्त
अच्छा
ही 28 का पैकेज है अपना। ये नाम कर्म की बात चल रही है। गोत्र कर्म की नीच गोत्र प्रकृति बंध से विच्छिन्न है। शेष कथन पहले के समान कहना चाहिए। देवगति में पहली पृथ्वी के समान बंध है। वो तो हमने देखा था देवगति और पहला यह प्रकृति बंध संबंधी विच्छिन्नता का निर्देश है। प्रकृति बंध विच्छिन्नता रूप से निर्दिष्ट इन्हीं प्रकृतियों की स्थिति बंध की अपेक्षा विच्छिन्नता का अनुमार्गण कर लेना चाहिए।
स्थिति बंध की विच्छिन्नता
देखो इन प्रकृतियों का स्थितिबंध की अपेक्षा विच्छिन्नता लेना यानी हमने स्थितिबंधापसरण के साथ साथ इसका क्रम देखना ये बात बता रही। जैसे प्रकृति बंधापसरण हर बार पृथक सागर कहा यानी हमने तो 100 सागर पृथक समझा है 700 से 800 सागर घटता है तब जाके एक 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 नंबर आता है। तथा जिन प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति नहीं होती उन प्रकृतियों की यहाँ क्या बनना बताना चाहते हैं। शुरू में तो अंत कोड़ाकोड़ी हो गया परंतु जो पहला बंधापसरण स्थान है वहां तक जो बंध से रुकी है उनका बंध अधिक होता था। अब जो लास्ट लास्ट में बंध से रुकी है
उसका
उनका बंध और घट गया था ना तब तक, इसलिए कहते कि उसका वो क्रम जानकर समझना। सबके लिए कथन क्या होगा अंतर कोड़ा कोड़ी का, क्योंकि प्राय के लब्धि वाले शुरू में तो उनका बंध ज्यादा था, लास्ट लास्ट में तो बंध कम हो गया था। तो यहाँ कहते जो जिनकी बंध विच्छित्ति नहीं होती उन प्रकृतियों की अंत कोड़ाकुड़ी से उपरिम स्थितिबंध विकल्पों की विच्छिन्नता समय के अविरोध रूप से जान लेना चाहिए। समय का अविरोध यानी क्या है मयंक भाई?
आगम,
हाँ आगमानुसार, आगम के अनुसार समय यानी आगम समय। शास्त्र को भी समय कहते हैं, अभी वहाँ तो आत्मा को भी समय कहा, उस दिन एक बात आई थी ना कसाई को भी समय कहा, आप थे कि नहीं थे?
फिर सांप को आया था ना?
नहीं नहीं यही
सांप्राय
को कहा था कसाई, समय सांप्राय को कहा था
वो जो चार दिन बता।
तो देखो कहाँ कौन से एक ही शब्द अर्थ में कौन कौन से आते हैं अलग अलग, यानी एक ही शब्द के कितने अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। समय ने समय काल भी हो सकता है, समय ने छह द्रव्यों को भी समय कहते हैं, जीव द्रव्य को भी समय कहेंगे, आत्मा को भी समय कहेंगे। रेलवे का टाइम टेबल होता था हम देखते थे, या तो समय सार पढ़ते या समय सारे नहीं पढ़ते, उनको समय सारे नहीं, रेलवे का टाइम टेबल है वो बुक आते हैं उसको समय सारे नहीं कहते उनके हिंदी में। इसी प्रकार अनुभाग बंध और प्रदेश बंध के विषय में भी हो गया ना, समय के अविरोध से उपचार लेना चाहिए। इसी प्रकार अनुभाग बंध और प्रदेश बंध के विषय में भी यह अर्थ योजित करना चाहिए। इस प्रकार यानी वो समय के अविरोध पूर्वक जान लेना है। इस प्रकार स्थितिबंध अनुभाग बंध और प्रदेश बंध की बंध विच्छित्ति जिसमें गर्भित है क्योंकि हमने देखा अनुभाग बंध में भी अशुभ अशुभ का तो द्विस्थानी होगा, शुभ का चतुस्थानी होता है, प्रदेश बंध भी यथायोग्य अनुत्कृष्ट वगैरह अजगण्य ऐसा देखा था। ऐसे प्रकृति बंध की विच्छित्ति का कथन कर अब प्रकृति विषय उदय विच्छित्ति का कथन करते हुए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। यहाँ उदय की विच्छित्ति कौन कौन सी होगी उसकी बात करेंगे, किसका उदय यहाँ नहीं पाया जाएगा। पहले सूत्र पढ़ेंगे पंच दंशनावरणीय, मंजू बहन ये पांच दर्शनावरणी कौन से हो गए जो यहाँ उदय नहीं होगा जिनका? हाँ पांचों प्रकार के निद्रा, यानी निद्रा के उदय में वो दर्शन मूर्ति उपशमने का कार्य नहीं होगा। तो पांच दर्शनावरण, चार जाति नाम कर्म, कौन एक के निधि इंद्रिय चतुर्ंगी, उनके तो समय तो प्राप्ति की योग्यता ही नहीं है। चारों अनुपूर्वी नाम कर्म क्योंकि उनका उदय तो विग्रह गति में होता है, तथा आतप स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण शरीर, ये सब एक इंद्रिय उनके होता है। और
ये तो प्रायोगिक दृष्टि तो
उद्योत को नहीं लिया है, उद्योत वाले को समय तो हो सकता है। ये प्रकृतियां उदय से विच्छिन्न होती है, विच्छिन्न होते ने भी उसका उदय चल रहा है उसके रुक के ऐसा नहीं है, यहाँ उसका उदय ही नहीं है। हाँ क्योंकि एक इंद्रिय आदि के यहाँ कहाँ उदय चलेगा, वो तो पहले हो गया, मैं तो सावर वगैरह की बात कर रहा हूँ। सब ले लिया, यहाँ सूत्र में ऊपर मैंने पढ़ा था ना, उन्हें वो पढ़ते पढ़ते छोड़ दिया था। पंच दंशनावरणीय चदु जादी नामानी चदु आणुपूर्वी नामानी आदावर थावर सूम अपजत सहारण शरीर नामानी एदानी उदयन उच्छिन्नानी। इसका अर्थ अभी मैंने पहले ही पढ़ चुका। ये नाक कर्म हुआ है पहली लाइन में, साधारण शरीर नाम कर्म मैंने भी पढ़ लिया, आपने भी सुन लिया। हाँ, ये जब जानते हैं ना प्रूफ रीडिंग, तो हमें मालूम है नाम कर्म शब्द तो हम पढ़ लेते हैं, यह गलत है तो ये रजिस्टर नहीं होता क्योंकि हाँ हजार हजार 1100 पेजेस की प्रूफ रीडिंग है ना, वो तो सारा घूमने लगता है इसीलिए।
कितना ही घंटे पे घूमने लगता है।
यहाँ सूत्र में पांच दर्शनावरण पद के निर्देश से निद्रादि पांच भेदों का ग्रहण करना चाहिए। उनकी इसके उदय विच्छित है क्योंकि साकार उपयोग और जागृत अवस्था विशिष्ट दर्शन मोक्षामक के इन पांच निद्रादि के उदय रूप परिणाम का विरोध है। इसी प्रकार सूत्र में निर्दिष्ट की गई चार जाति आदि प्रकृतियों के उदय के अभाव की भी कथन करना चाहिए। विशेषार्थ दर्शन मोह का उपशामक वही जीव हो सकता है जो संगी पंचेंद्रिय और पर्याप्त होकर जीवादि नौ पदार्थों के यथार्थ ज्ञान के साथ अपने साकार उपयोग द्वारा जीवादि नौ पदार्थों में अनिश्चित एकमात्र जीव पदार्थ के अनुमनन के सम्मुख हो। क्या बात है, क्या कहते हैं, साकार उपयोग द्वारा क्या कर रहा है,
जीवादि
जो नौ पदार्थ है उसमें अनुच्छित करते, उसमें जो एक कंटिन्यूस है, जैसे हम कहेंगे नौ तत्वों में छुपी हुई आत्मशुद्धि, जब यहाँ नौ कहते हैं तो वो पर्याय रूप से ग्रहण करना है, वो सारी जीव की पर्याय है। ध्यान में आती कुछ बात नहीं समझा
नहीं, नहीं, जीव
यहाँ जीव तत्व जो है ना, हाँ। जीव पदार्थ जिसको कहते हैं वो भी जीव की पर्याय की बात ही है, तो इसमें सब में जीव ही व्याप्त है ऐसा लेना। यहाँ क्या कहा, अजीव तत्व में भी अजीव संबंधी जीव का ज्ञान उसमें लिया है, कलस्टिका में पढ़ना, स्वामी जी ने भी उसके ऊपर प्रवचन किया और मूल कलस्टिका में भी लिया है। देखो जीवादि नौ पदार्थों में अनुस्यूत इनकंटिन्यूटी, एकमात्र जीव पदार्थ के अनुमनन के सम्मुख हो। जैसे हम उदाहरण देंगे, अभी अभी ये यहाँ तो रुमाल है फिर भी हम उसको कोई सूत होते हैं ना, उस सूत का हार बनाते हैं धागे का। अब यहाँ तो ये तो सीधा कपड़ा है और बीच में उसकी हमने गांठ बना ली, तो ये तो कपड़े से ये अलग दिख रही है, परंतु इसमें क्या है, कपड़ा ही व्याप्त है, कपड़े की ही ये अलग से पर्याय भी है। देखो अनिश्चित, इसमें क्या अनिश्चित है, तो कपड़ा ही अनिश्चित है। तो यही कहते हैं नौ पदार्थों में अनिश्चित एकमात्र जीव पदार्थ के अनुमनन के सम्मुख, अनुमनन करने में उसको मनन करना, उसके संबंध में ज्ञान में उसको बार बार लेकर उसका विचार करें। अनुशीलन अलग बात है, अनुमनन है अभी उसमें स्थिर हो जाने की बात। ऐसा जीव नियम से जागृत होता है क्योंकि तत्व ज्ञान की तत्व की निर्मलता चल रही है वहां पर, ये ज्ञान उपयोग नहीं होता है और ज्ञान से ही ये होती बात, इसलिए तो उसके निद्रादि पांच दर्शनावरण प्रकृतियों के उस काल में उदय का निषेध है, उस काल की बात। साथ ही उसके संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त एकमात्र यही जीव समास होता है, 14 जीव समासों में से कौन सा वाले को होगा, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त के होगा, समय से भी प्राप्त
पे दशरथ ने पांच ही छोड़ा है, तो यहाँ पे जो ये जो ज्ञानोपयोग जो हम लोग का चल रहा है वहाँ पे दर्शनोपयोग पूर्वक होगा क्या? क्योंकि यहाँ पे तो सूत्र ज्ञान में ये सब चलेगा।
उसके पहले दर्शनोपयोग हो चुका, अभी ज्ञान में चला।
हाँ तो उसके पहले हो चुका, तो अभी तो दर्शनोपयोग है नहीं।
वही तो बता रहे, दर्शनोपयोग है ही नहीं है,
तो पीछे दर्शन
भी नहीं है।
निद्रा तो नहीं है, पर सब दर्शन उपयोग की ये जो सूता है चक्षु दर्शन अर्थात
वो चली है ना। पर्याय अलग बात होती है और उपयोग अलग बात होता है। यहाँ तो निद्रा का उदय नहीं, ये तो बात है। अब इसमें बीच में दर्शन उपयोग, क्योंकि कोई चेंज होगा हमारा विचार वगैरह, वहाँ दर्शन उपयोग तो चेंज हो सकता है। जिस समय उत्तम समय क्योंकि प्राप्ति का प्रथम समय है, वहाँ तो नियम से
ज्ञान उपयोग भी होगा,
साकार उपयोग। अब यहाँ तो यहीं से साकार उपयोग भी है।
हाँ, इसीलिए मैंने पूछा कि यहाँ पे
वो शिष्य ज्ञान ही लंबाता है ना, वो कितना छोटा अंतर मुहूर्त है, ये डेढ़ घंटे की बात नहीं है, 48 मिनट की बात नहीं है। अभी उसकी जो विचारधारा चल रही है, आत्मसम्यकता की बात चल रही है, वो ज्ञान उसका शिष्य ज्ञान की धारा चल रही है। पहले जब मति ज्ञान में था या उसने कोई शब्द सुना या पढ़ा या सिर्फ मन के द्वारा सोचा, तब मति ज्ञान हुआ था। उसके पहले उसके दर्शनों पे हुआ था। फिर मति ज्ञान के बाद अभी श्रुत की धारा चल रही, क्योंकि आत्मसन्मुख चल रही परिणाम। अभी श्रुत ज्ञान में ही श्रुत ज्ञान होगा, एक श्रुत ज्ञान के बाद दूसरा श्रुत ज्ञान, ये विचारधारा अलग 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 पड़तेगी तो भी श्रुत ज्ञान चल रहा है कंटिन्यू, जरूरी नहीं बीच में दर्शनों पे हो।
इसीलिए मैंने पूछा कि दर्शन युक्त ये दोनों दर्शन उपयोग को भी छोड़ना है कि नहीं।
तो यहाँ कहते साकार उपयोग द्वारा जीवादि नौ पदार्थों में अनिश्चित नहीं, हमने पढ़ा था नीचे, हम पढ़ा था एक संगी पंचमी में पर्याप्त एकमात्र यही जीव समास होता है, मिला ना पांचवी लाइन में विशेषार्थ किया। इसलिए उसके एकेंद्रियादि चार जाति आतप सावर सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण, इन प्रकृतियों के उदय का निषेध किया है। यहाँ सूत्र में पांच दर्शनावरण आदि के मात्र उदय का निषेध किया है, परंतु इससे इन प्रकृतियों की उदीर्णा का भी निषेध जान लेना चाहिए, क्योंकि कुछ अपवादों को छोड़कर सर्वत्र उदीर्णा उदय की अविनाभाविनी होती है।
ये अपवाद बताया तो कौन से हो गए?
नहीं, उदय और उदीर्णा नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे आयु के अंतिम अवधि में
उदीर्णा नहीं होती,
उदय उदीर्णा है, जहाँ कोई जो सत्ता जिसकी प्राप्त अवधि प्रमाण रहेगी उसका उदय है, उदीर्णा नहीं। ये तो रूल यहाँ का नहीं बताया, रूल तो सब जगह एप्लीकेबल बताए। तो उदय और उदीर्णा नहीं ऐसा कहाँ होता है? जैसे दर्शनों की सपना करते करते कृत्य वेदक हो गया
एक अवधि में,
और उसके एक अवधि बाकी है, तो उदीर्णा रूप गई, उदय चल रहा, ऐसा लगा लो जहाँ पॉसिबल है वहाँ। इस प्रकार ये तो विशेषार्थ हो गया। यहाँ उदय भी नहीं है और उदीर्णा भी नहीं है, ये जाए। इस प्रकार ओह से कहे गए इस अर्थ का फिर भी स्पष्टीकरण करने के लिए आदेश प्ररूपणा करते हैं। उदय की बात चले ना, ये आदेश नहीं बताएंगे। आदेश से चारों ही गतियों में पांच ज्ञानावरण प्रकृतियों का उदय विच्छेद नहीं है। पांचों ज्ञानावरण का उदय कहाँ तक चलेगा?
बारह।
दर्शनावरण की चार प्रकृतियों का उदय विच्छेद नहीं है, वेदनी की साता रसाता इन दोनों प्रकृतियों का उदय विच्छेद नहीं है, किसी के साता का उदय होगा किसी के असाता, पहले साता का उदय हो जाए फिर समय तो हो जाए, ऐसा है ना। हमारे सारे जो प्रयत्न है क्या होते हैं, संयोगों को ठीक करो फिर हम जाए नहीं, इसमें लगेंगे क्या है। यहाँ तो बताएं उसका भी उदय द्विस्थानी होता है, बंद की बात नहीं है, सत्ता की और बंद की। मोहनी की सब प्रकृतियों का उदय विच्छेद नहीं है, अभी किसी भी का अभी उदय विच्छेद नहीं हुआ है, निख्यात व अनंतानुबंधी सब चल रहे हैं। इतनी विशेषता है कि नारकियों में स्त्री वेद और पुरुष वेद का उदय नहीं होता, वो तो हमेशा ही है, नहीं वो तो जनरल की स्टेटमेंट है, यहाँ की विशेषता नहीं है, प्राय गलत भी। तथा देवों में नपुंसक वेद का उदय नहीं होता ऐसा कहना चाहिए। आयु की सभी प्रकृतियों का उदय विच्छेद नहीं है, यानी किसी भी चारों गति में किसी भी जीव को समय तो हो सकता है। इतनी विशेषता है गति विशेष के संबंध से, एक आयु के उदय रहने पर उसके शेष आयुओं का उदय नहीं होता ऐसा कहना चाहिए। जो मनुष्य उसको मनुष्य आयु का ही उदय, अन्य आयु का नहीं। यदि नारकी है तो नाम कर्म की नरक गति, पंचेंद्रिय जाति, वैक्रिय शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, कुंडक संस्थान, वैक्रिय शरीर अंगोपांग, वर्ण चतुष्क, अगुरु लघु चतुष्क, अप्रशस्त विहार गति, त्रस चतुष्क, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, दुर्भग दुस्वर, अनादेय अयस्थिति और निर्माण नाम वाली ये प्रकृतियाँ उदय से विच्छिन्न नहीं है। शेष प्रकृतियाँ उदय से विच्छिन्न हैं, अर्थात शेष प्रकृतियों का उसके उदय नहीं होता। ये नाम कर्म की बात चल रही है, उदय योग्य प्रकृतियाँ। यदि तीर्यंच है तो तीर्यंच गति, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, छह संस्थानों में से कोई एक, यह कॉम्बिनेशन होगा। औदारिक शरीर अंगोपांग, छह सहननों में से कोई एक, ऊपर नारकी में सहन नहीं लिया था, यहाँ सहन लिया। वर्ण चतुष्क, अगुरु लघु चतुष्क, कदाचित उद्योग, दो विहाय गतियों में से कोई एक, त्रस चतुष्क, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, फिर सुभग दुर्भग में से कोई एक, सुस्वर दुस्वर में से कोई एक, आदे अनादेय में से कोई एक, यशस कीर्ति यशस कीर्ति में से कोई एक और निर्माण, ये प्रकृतियाँ तीर्यंच के उदय से विच्छिन्न नहीं है। शेष प्रकृतियाँ उदय से विच्छिन्न हैं, अर्थात शेष प्रकृतियों का उसके उदय नहीं होता। ये बात ख्याल में आ रही है। मनुष्य के भी मनुष्य गति और पंचेंद्रिय जाति इत्यादि रूप से तिर्यंच के समान जानना चाहिए। इतनी विशेषता है इसके उद्योग प्रकृति का उदय नहीं होता। नाम कर्म में उदय की क्या विशेषता है मालूम है? याद है, मालूम है, कितने से याद है। नाम कर्म में जो जिन प्रकृतियों का उदय होता है तो उसके उदय के बारे में क्या नियम कुछ मालूम है?
नाम कर्म के
उदय में पैकेज तो हमने बंद में देखा, उदय में किस प्रकार का होता है पैकेज? नहीं वो बात नहीं है, उदय में ही अभी ये जो हमने देखा अभी तीर्यंचों में ये उदय रूप प्रकृतियाँ होती है, तो तीर्यंचों में हर समय इतनी उदय रूप होगी कि नहीं होगी?
होगी ना।
चलो हमने पेपर फोड़ दिया, जैसे विग्रह गति में इसमें से कुछ वहाँ तो 21 का ही होता है, फिर शरीर मिश्र अवस्था जिसको कहेंगे, शरीर पर्याप्त जब तक पूरी नहीं हुई तब 24 या 26 जो उसका उतने का ही उदय है, फिर वो परघात विहार गति वगैरह का उदय होता है, फिर विश्वास का होता है, फिर स्वर का होता है, ये जो बात है क्रम से होती है, इसके पांच अलग अलग काल होता है। एक तो विग्रह गति का काल, एक शरीर मिश्र काल यानी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती तब तक, शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर फिर भाषा नहीं विश्वास पर्याप्ति का पहले पहले
नहीं नहीं भाषा पर्याप्ति
मिश्रा शरीर पर्याप्ति काल
पीछे
मिश्रा के बाद शरीर पर्याप्ति
विश्वास पर्याप्ति
विश्वास पर्याप्ति और भाषा
पर्याप्ति
वो मरण तक रहे, तो यहाँ पर्याप्त होने के बाद है इसलिए तो पूरी की पूरी जहाँ उदय योग्य है वो सब उदय रूप रहेगी वहाँ पर। अलग अलग जगह तो अलग अलग उदय चालू होता है, वो बात यहाँ कहने का प्रयोजन नहीं था तो, क्योंकि पर्याप्त जीवों के ही समय से की प्राप्ति हो रही है। कौन सा? हाँ, कर्मकांड में नाम कर्म के उदय स्थान के कितने का उदय होता है, कहाँ पर होता है, कौन कौन सी अलग अलग अभी स्थान, यानी इतने प्रकृति का स्थान है, जैसे हम 20 का स्थान कहेंगे, 21 का स्थान कहेंगे, 24 का कहेंगे, 26 का, 26 का किस किस के होता है, कोई अपर्याप्तम के होगा, किसी पर्याप्त के होगा, किसी एक केंद्र में होगा, किसी ऊपर के, तो उसकी ये सारे टेबल दे सकते हैं। अभी आएगी बात कर्मकांड की शिविर में आएगी,
यहाँ पे भी आएगी,
शाम को आएगी।
अच्छा।
और शिविर में भी ले लेंगे उसको भी। अभी आगे का पॉइंट समय है ना, यदि सदी हुआ है,
यदि
देव है तो, अब देवों के तो नियम रूप से ही उदय रहेगा ना, देव गति, पंचेंद्रिय जाति, वैकृत शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्व संस्थान। अभी नारकी के समान इसके कंपेयर करा, वहाँ हिंदु संस्थान दिया था, वैकृत शरीर अंगोपांग, वर्ण चतुष्क, अगुरु लघु चतुष्क, प्रशस्त व्याय ऋतु, वहाँ प्रशस्त व्याय, रस चतुष्क, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, ये तो सभी के होता है। यहाँ शुभ लेना, सुस्वर लेना, आदेय, यशस, कीर्ति और निर्माण नाम वाली ये प्रकृतियाँ उदय से विच्छिन्न नहीं है।
28
शेष प्रकृतियाँ उदय से विच्छिन्न है, क्या कहते हैं? कितनी हुई?
28 हुई ना,
गिनो।
मैं एक मिनट था,
यहाँ 29 हो गए, 30 हो गए। देखो देवगति में एक नंबर रहा ना, पंचेंद्रिय जाति
29 है,
वैकृत शरीर 3, तेज शरीर 4, कार्मण शरीर 5, समय चतुर संस्थान 6,
29
हुआ ना। हाँ नहीं, शरीर अंगोपांग एक शब्द है, तो 29 हुई। बंद में हमने 28 ही देखी थी, उसमें से कौन सी नई और कौन सी एडिशन है, मैं पूछ रही हूँ।
बंद
तो 28 का होता है। हाँ नहीं, यशस्वी किसी का बंद तो है ना,
देव को कौन सी नहीं बनती है, सब पूछा ना आपने।
ऐसा नहीं है, देव में कौन सी बनती है जो यहाँ नहीं ली है, और जो नहीं बनती और यहाँ ली है। देखो बनता है, मैं बोलू, एक तो दत्यानुपूर्वी बनती है परंतु यहाँ उदय में नहीं है, तो कम होनी चाहिए थी, परंतु यहाँ स्थिर अस्थिर दोनों को उदय में लिया, बंदेगी एक ही एट ए टाइम, स्थिर शुभ शुभ ऐसी बंदेगी ना, शुभ प्रकृतियाँ और उदय, ये ध्रुवोदय है, हमेशा स्थिर अस्थिर दोनों का उदय होता है, दोनों का ही होता है, बंदेगी एक, तो बनने में 28 ली, तो ये दो यहाँ एडिशन ली, और जो बंदी थी गत्यानुपूरी वो नहीं ली, 28 में से एक निकाल दी, 27 और दो ऐड कर दी, 29 हो गए। अरे केवल लिखा है वो आपको नहीं पूछेंगे।
नहीं, गत्यानुपूर्वी का भी सोचा था, पर ये स्थिर अस्थिर का नहीं चल रहा है,
बनने में अकेले
एक ही सुबह सुबह
और उदय रूप दोनों ही रहते, हमेशा दोनों का उदय, वो तो ध्रुवोदय में ले। शेष प्रकृतियां उदय से विच्छिन्न है, अर्थात उनका उदय नहीं होता। यदि नारकी और तीर्यंच है तो गोत्र कर्म की नीच गोत्र प्रकृति उदय से विच्छिन्न नहीं है।
उच्च गोत्र
उच्च गोत्र प्रकृति उदय से विच्छिन्न है। यदि मनुष्य है तो नीच गोत्र और उच्च गोत्र इनमें से कोई एक प्रकृति उदय से विच्छिन्न है, यानी किसी एक का उदय रहेगा एक का नहीं रहेगा। यदि देव है तो उच्च गोत्र प्रकृति उदय से विच्छिन्न नहीं है, नीच गोत्र प्रकृति उदय से विच्छिन्न है। यह प्रकृति उदय विच्छिन्नता है जिसका सूत्र के अनुसार विचार किया। पढ़ेंगे क्या थोड़ा होगा? जो प्रकृतियां जहां पर उदय से अविच्छिन्न है, यानी जिनका उदय चल रहा है, उदय से अविच्छिन्न है जिनका उदय हो रहा है, वहां उनकी अंत कोड़ाकोड़ी प्रमाण स्थिति उदय से अविच्छिन्न है।
अंत कोड़ाकोड़ी बंदेगी,
बंदे की बात नहीं चल रही, उदय की बात चल रही।
अच्छा, सॉरी।
अंत कोड़ाकोड़ी का उदय होता है का अर्थ है अंत कोड़ाकोड़ी में से सभी निषेकों में से उदीर्ण होकर उदय होता है। शेष प्रकृतियों की सब स्थितियां उदय से विच्छिन्न है, क्योंकि जो उदय में नहीं है तो उनकी तो सभी स्थितियां अनुदय रूप से रहती है। यह स्थिति उदय विच्छिन्नता है, यानी जिस प्रकृति का उदय है उन्हीं के सभी स्थितियों में से उदय चल रहा है।
उसके ऊपर की है ही नहीं प्रकृति, स्थिति है ही नहीं।
जिसका उदय ही नहीं है, ऊपर की स्थिति नहीं है, उसकी बात नहीं चल रही है।
नहीं नहीं, यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं? जो प्रकृति है जहाँ पर उदय से अविच्छिन्न
है, उदय चल रहा है,
वहाँ उनकी अंतकोड़ाकोड़ी प्रमाण स्थिति उदय से अविच्छिन्न है।
यानी उनकी कितनी सत्ता में पड़ी
अंतकोड़ाकोड़ी,
तो सभी में से उदीर्ण होकर उदय होगा कि नहीं होगा?
होगा,
वही बात बता। और जिनका उदय ही नहीं है उनकी एक भी स्थिति में से उदय नहीं हो रहा है, ये बात बता। जो अप्रशस्त प्रकृतियां उदय से अविच्छिन्न है उनका द्विस्थानीय अनुभव सत्व से अनंत गुणाहीन होकर उदय से अविच्छिन्न है, यानी सत्ता में पड़ा है, द्विस्थानीय होता हुआ अनंत गुणाहीन हो रहा है, फिर भी उदय में नहीं आ रहा, सत्ता में पड़े पड़े उसका अनुभव घट रहा है। जो प्रशस्त प्रकृतियां उदय से अविच्छिन्न है, यानी जो उदय रूप है, उन प्रकृतियों का चतुस्थानीय अनुभव बंध से अनंत गुणाहीन स्वरूप होकर, ये तो नियम है, बंधने के बाद अनंत गुणाहीन होकर उदय होता है, उदय से अविच्छिन्न है। शेष प्रकृतियों का अनुभव उदय से अविच्छिन्न है, उनका उदय ही नहीं है, यह अनुभव विच्छिन्नता है, प्रदेश विच्छिन्नता।
चतुस्थानीय अनुभव बंध से अनंत गुणाहीन स्वरूप होकर उदय से
जितना बंध होता है उसी रूप में उदय नहीं होता है,
अविच्छिन्न बताया ना, उदय से अरे बंध से अनंत गुणाहीन स्वरूप होकर उदय से अविच्छिन्न है, तो वही रूप से उदय में आता है, इसे बता रहे। प्रशस्त में प्रशस्त की बात है ना,
उदय से अविच्छिन्न होते हैं ना, उदय होता है,
हाँ।
अनंत गुणाहीन रूप होकर उदय में आता है, अनंत गुणाहीन स्वरूप उदय में आता है, ऐसा अर्थ करो।
बंध से अनंत गुणाहीन स्वरूप होकर उदय से अविच्छिन्न है,
जितना बंधा है चतुस्थान का वो अनंत गुणाहीन होता है, उदय में आता है,
उसके उदय की अविच्छुति नहीं बताई, अविच्छिन्न है इसका बताया।
अरे उदय विच्छुति कैसे क्या प्रशस्त प्रकृतियाँ है उदय?
नहीं नहीं, वो तो बराबर अनुभाग के जो
चतुस्थानी बांधा
है उदय होता है अविच्छिन्न,
हाँ वो
उदय होता है,
नहीं अनुभाग की बात है,
अनुभाग की बात चल रही है, अनुभाग अस्थि होकर उदय में
आएगा,
25 इतना घटेगा नहीं है, चतुस्थानीय रहेगा,
चतुस्थानीय रहेगा,
हाँ
इतना कम होके नहीं आएगा,
क्योंकि वो तो थोड़ा सा एक पर्वत भी घट गया तो भी अनंत गुणाहीन हो गया अनुभाग, जितना बंदा है बंदावली में तो उदय नहीं होगा, और उसके बाद नियम से अनंत गुणाहीन होकर ही उदय में आता है, ये तो नियम है। ये दो वाक्य पढ़कर फिर विशेषार्थ कर देखेंगे। जो प्रदेश विच्छिन्नता देख रहे हैं, जो प्रकृतियां उदय से अविच्छिन्न है यानी उदय में आ रही है, उन प्रकृतियों का अनुत्कृष्ट प्रदेश पिंड उदय से अविच्छिन्न है, यानी अनुत्कृष्ट रूप से उदय में आ रहा है। शेष प्रकृतियां प्रदेश पिंड की अपेक्षा उदय से विच्छिन्न है, क्योंकि उसका उदय ही नहीं तो प्रदेशों का उदय कहेंगे नहीं। यही पर प्रकृति आदि की उदीरणा की विच्छिन्नता और अविच्छिन्नता को भी इसी दिशा से जान लेना चाहिए। जिसका उदय है उसकी उदीरणा भी है कि नहीं वो कहेंगे। इस प्रकार तीसरी गाथा के पूर्वार्ध के अर्थ का विशेष व्याख्यान समाप्त हुआ, जिसका विशेषार्थ कल देखें। जावानी के ज्ञान से तुझे लोकारो सोवानी मस्तक नमो सदा देतमो।